पति राघव राजा राम पति का पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम बोलो श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय सिया राम श्री राम जय राम जय सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय सीता राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम सीता रामचंद्र भगवान की जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्र महारानी की जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय गोनिताय की जय श्रील प्रभुपाद की जय So we will chant a prayer for Lord Shri Ram. You can all close your eyes and join your hands.
Lokabhiramam ranarangadhiram Lokabhiramam ranarangadhiram Rajivanetram Raghu Vamshanatham Rajivanetram Raghu Vamshanatham Karunyarupam Karunakaram Tam Karunyarupam Karunakaram Tam Shri चंद्रम शरणम प्रपद्ये श्रीरामचंद्रम शरणम प्रपद्ये श्रीरामचंद्र भगवान की जय। क्लास हिंदी में होगा, सॉरी फॉर द डिसअपॉइंटेड फेसेस, लेकिन पिछले दो रविवार से तेलुगु में हो रहा है, इसलिए आज हिंदी वालों का चांस है। अभी रामनवमी पास आ रही है तो मैंने सोचा रामायण से कुछ डिस्कस किया जाए। अगर किसी बड़े आदमी को मिलना है तो पहले उसके सेक्रेटरी को मिलना पड़ता है, उसके बाद में वो बड़े आदमी से अपॉइंटमेंट मिल सकती है। तो उसी तरह से अगर श्री राम जी को मिलना है तो पहले उनके सेक्रेटरी को, असिस्टेंट को थोड़ा सा बटर करना पड़ेगा। तो सबसे बड़े असिस्टेंट, सेक्रेटरी, दास राम जी के कौन है? हनुमान। तो इसलिए आज हनुमान जी पे हम लोग चर्चा करेंगे। हनुमान जी सबको अच्छे लगते हैं, छोटे बच्चों के तो ज़्यादा फेवरेट है। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, 4-5 साल 6 साल, तो एक कमरे से दूसरे कमरे जाने के लिए अगर मम्मी कुछ काम बोलती थी तो अंधेरे में डर लगता था जाके लाइट वगैरह ऑन करने के लिए। तो मुझे हनुमान चालीसा मेरे मदर ने बायहार्ट करवाया था, तो जब भी वो अंधेरे से डर लगता हो या जहाँ पे कमरे में लाइट ऑन करनी हो, हॉल से बेडरूम तक जाना हो, तो ये भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना, ऐसे बोलते बोलते जाते थे। तो मेरी तो काफ़ी फेवरेट है हनुमान जी। आई थिंक सब जब छोटे होते हैं तो आई थिंक सब लोग ये पक्का आता है सारे बच्चों को, मुझे आजकल के बच्चों का पता नहीं है वो डरने से क्या बोलते हैं क्या करते हैं, बट हम जब छोटे थे तब यही सिस्टम था। और जब राम जी नीचे धाम, साकेत धाम वापस जा रहे थे, तब राम जी के साथ सब चले गए, लेकिन हनुमान जी ने बोला कि मैं यही रहूँगा जहाँ राम की कथा होती है, मैं वहाँ जाके राम की कथा सुनूंगा, जब तक राम जी का नाम है इस भौतिक जगत में मैं यही रहूँगा। तो इसीलिए 7 चिरंजीवियों में से एक हनुमान जी जो है, जो अभी भी है, यही है। तो जहाँ राम जी की कथा होती है वहाँ हनुमान जी आते हैं। और जब राम जी ने हनुमान जी को ये वर दिया तब राम जी ने और एक बात भी बताई, उन्होंने बोला कि जहाँ मेरी कथा होती है वहाँ तुम जा सकते हो, लेकिन जहाँ तुम्हारी कथा होती है वहाँ मैं जाके बैठूंगा। तो आज हनुमान जी की कथा हो रही है तो राम जी सुनते हैं। जब भक्तों की कथा होती है तो भगवान को सुनने में आनंद आता है, जब भगवान की कथा करते हैं तो भक्तों को सुनने में आनंद आता है। तो आज भगवान को आनंद देंगे और भक्त की कथा करेंगे, तो आज हनुमान जी की हम कथा करेंगे। मैं सोच रही थी कि हनुमान जी की कथा काफ़ी फेमस है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, कार्टून्स भी बहुत आ चुके हैं और बच्चे बच्चे को सबको बाई हार्ट है, लेकिन आज डायरेक्ट कथा पे ना जाके हम हनुमान चालीसा का पारायण करेंगे और फिर हनुमान चालीसा के एक एक पंक्तियों को मैं एक्सप्लेन करते हुए उनके साथ कोई एक मनोरंजक कहानी सुनेंगे। आप में से कितने लोगों को हनुमान चालीसा आती है बाई हार्ट? ओके, फिर तो आपको अच्छा लगेगा। आप करते हैं रोज हनुमान चालीसा? करते हैं? नहीं करते हैं? कितने बार? हम जब छोटे थे तब हमारे घर में ऐसा सिस्टम था, जैसे किसी को मेडिसिन देते हैं ना कि भाई बुखार है तो एक क्रोसिन ले लो, कफ एंड कोल्ड है तो बेनाड्रिल ले लो, वैसे हमारे घर में बुखार है, अच्छा 11 बार हनुमान चालीसा कर लो, अच्छा सर्दी है 5 बार कर लो, बस यही था। मतलब हनुमान जी मतलब डिजीज क्यूर करने के लिए। तो फैमिली ट्रेडिशन ऐसा कोई नहीं हमारे परिवार में जो हनुमान चालीसा नहीं जानता, बचपन से मतलब ये डर लग रहा है हनुमान चालीसा कर लो, कुछ भी क्लास में कोई तंग कर रहा है हनुमान चालीसा करो, कोई भी चीज से प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करना है तो हनुमान चालीसा करो। तो हम लोग आज हनुमान चालीसा कहते हैं उसको, चालीसा माने 40 श्लोक है उसमें, जिसमें हनुमान जी के बारे में उनका गुणगान करते हुए बताते हैं कौन? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने ये रचना की है। तुलसीदास जी को हम सब जानते हैं रामचरितमानस की अवध भाषा में जिन्होंने रचना की थी उनके द्वारा ये किया गया है। तो हम एक 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 लाइन पढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप अपने अपने फोन्स में हनुमान चालीसा दबाइए। रामायण के सुंदर कांड में इनकी कथा आती है। अगर हम ऑब्जर्व भी करें रामायण में हर एक कांड जो बोलते हैं जैसे भागवत में होता है ना, रामायण के हर कांड का नाम उस कांड में कौन सी लीला की चर्चा की गई है उसके अनुसार नाम रखा गया है। जैसे बाल कांड माने बाल लीला, अरण्य कांड माने जब फॉरेस्ट में गए थे तब क्या हुआ, युद्ध कांड माने जब युद्ध हुआ था। लेकिन जहां हनुमान जी की एंट्री आती है उसका नाम हनुमान कांड नहीं है, सुंदर कांड। बस माने बोलना चाहते हैं कि भगवान के भक्त से जुड़ी हुई लीला, भगवान के भक्त इतने सुंदर है क्या एक्सप्लेन करे, देर आर नो वर्ड्स। इसलिए उस कांड का नाम है द ब्यूटिफुल, दैट्स इट, द ब्यूटिफुल। क्या है उसमें ब्यूटिफुल, क्या राम जी ब्यूटिफुल है, क्या हनुमान जी ब्यूटिफुल है, या उनके बीच का रिश्ता ब्यूटिफुल है, या उनकी लीला ब्यूटिफुल है, बस वट एवर इट इज, नाम ही है द ब्यूटिफुल। सुंदर कांड माने ब्यूटिफुल। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि भक्त भगवान की सेवा करने के लिए कितने सैक्रिफाइसेस करते हैं, और हनुमान जी के लाइफ में तो हम और भी इसको कीनली देख सकते हैं, एवरी मोमेंट कैसे हनुमान जी अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित करते हैं। तो मेरे साथ एक एक लाइन गाएंगे और फिर हम उस पर चर्चा करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउ रघुबर बिमल जशु जो दायक फलचार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु क्लेश विकार। यहाँ पे तुलसीदास जी पहले अपने गुरु को प्रणाम करते हैं, कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु जी के चरण की रज को मेरे सिर पे धारण करता हूँ, गुरु जी के चरण की रज से ही मेरे हृदय रूपी आईना साफ होगा। हृदय में जो आईना है वो गंदा है, कितने कितने जन्मों की किए हुए पाप उस पे पड़े हुए हैं, लेकिन गुरु के चरण की रज को जो सिर पे धारण करता है उसका आईना साफ हो जाता है। बरनउ रघुबर बिमल जशु, रघुवर माने भगवान रघुनंदन, राम जी के बारे में उनके यश के बारे में वर्णन करने के लिए शक्ति दीजिए। जो दायक फलचार, उनके जीवन चरित्र के बारे में जो चर्चा करता है उसे हर प्रकार के फल मिलते हैं। सबको क्या चाहिए, अर्थ काम मोक्ष धर्म जो भी चाहिए सब प्रकार के फल मिलते हैं जब राम जी के भक्तों की चर्चा करते हैं या राम जी के यश की चर्चा करते हैं। बुद्धिमान तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार। मेरे में तो इतनी बुद्धि नहीं है लेकिन हनुमान जी या राम जी मुझे ये बुद्धि दीजिए, मैं तो बहुत वीक हूँ, मुझे बल दीजिए बुद्धि दीजिए कि मैं पवन कुमार, हनुमान जी पवन कुमार बोलते हैं हनुमान जी को, उनके बारे में सबको बता सकूं। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु क्लेश विकार, ओ हनुमान जी जो आपके बारे में स्मरण करता है चर्चा करता है उसके सारे दुखों को दोषों को आप माफ कर देते हैं। तो ऐसे करके प्रार्थना करके तुलसीदास जी शुरू करते हैं। बहुत सुंदर सिस्टम है, कभी भी हम कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमारे हृदय को साफ करना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट लेने की कोशिश करने से वो जाएगा ही नहीं अंदर। जिस तरह से मैं बहुत बार बताती हूँ कि अगर कोई भिखारी है भीख मांगने गया है, किसी ने बहुत प्रेम से उस भिखारी को खीर दे दी भीख में, लेकिन फिर भी भिखारी उस खीर का आनंद नहीं ले पाएगा क्योंकि उसके प्लेट में तो कल की पुरानी चपाती पड़ी हुई है जिसमें से बास आ रही है, और वो पुरानी चपाती के साथ आज की ताज़ा खीर मिक्स करेगा तो भी वो स्वाद नहीं आएगा। तो कभी कभी हमारे हृदय में इतना कुछ मैला भरा हुआ है कि अगर कोई निर्मल ज्ञान डालने की कोशिश करे फिर भी हमें समझ में नहीं आता। जैसे बहुत बार मैं बताती रहती हूँ कि कभी कभी मुझे भक्त लोग बोलते हैं माता जी आज का संडे क्लास बहुत अच्छा लगा, कभी कभी बोलते नहीं अच्छा नहीं लगा। अब क्लास तो हमेशा सेम होता है लेकिन आप मंडे टू सैटरडे क्या करके आए हो उस पर डिपेंड होता है कि आपको क्लास कैसा लगेगा। अगर मंडे टू सैटरडे आपने ठीक से अपनी माला की है, अपना सत्संग किया है, भागवत श्रवण किया है, आप प्योर कॉन्शियसनेस में रहे हो, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, आप इतने प्योर कॉन्शियसनेस में होंगे कि तब लेक्चर में कोई एक बात भी बोले तो बस आपको छू जाती है, बस आपको अच्छी लगती है, आपको हर चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन जब आप मंडे टू सैटरडे इतना बाहिरमुख हो गए हो, भगवान को बिल्कुल याद ही नहीं किया है, और फिर आप डायरेक्ट संडे लैंड करते हो कि अब मैं सुनूंगा, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कुछ भी मज़ा नहीं आता है। इसीलिए तो श्रील प्रभुपाद जी ने ये सिस्टम शुरू किया कि क्लास होने से पहले कीर्तन होना चाहिए, क्योंकि आप क्या करके आए हो तो पता नहीं, कम से कम पहले आप थोड़ा देर कीर्तन करोगे और फिर आपके जो आप जो माइंड से आए हो पहले उसको शांत करोगे। बाहर के जगत में सबका माइंड पागलों के जैसे यहाँ वहाँ घूम रहा है, कोई आनंद में नहीं है, ये ज्ञान को प्राप्त करने के मोड में भी नहीं है। तो पहले तो हरे कृष्ण कीर्तन होगा आधा घंटा एक घंटा, फिर हम पवित्र होंगे, उसके बाद पवित्र होना माने हमारी प्लेट क्लीन होगी, अब उसके बाद जब उस पर खीर पड़ेगी तो उसका टेस्ट हमें अच्छे से आएगा, तो बहुत जरूरी है। तो यहाँ भी क्या कर रहे हैं तुलसीदास जी, पहले प्रार्थना कर रहे हैं गुरु के चरण में और फिर हनुमान जी को ग्लोरीफाई करना शुरू करते हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सतिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। यहाँ पे बोले जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, हनुमान जी आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप ज्ञान के गुण के सागर हो, राइट। कुछ लोग बहुत ज्ञानी होते हैं लेकिन गुणी नहीं होते हैं, ज्ञान होने के बावजूद उनमें अभिमान होता है। ज्ञान होना और अच्छे गुण होना ये बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है ना। जैसे कुछ लोगों में बहुत सारी क्वालिटीज होती है लेकिन उसका अभिमान हो जाता है, उनमें विनयता नहीं रहती है। लेकिन हनुमान जी ज्ञान और गुण के सागर है, उनके पास बुद्धि भी है लेकिन अभिमान नहीं है। जय कपीस तिह लोक उजागर, ओ हनुमान जी आपके वजह से तीनों लोक में उजियारा है, आपके नाम का, आपके यश का। राम दूत अतुलित बल धामा, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप राम के दूत हो, राम के मैसेंजर हो, आप राम के हो। उसके बाद अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आपका नाम क्या है, आपको अंजनी पुत्र भी बोलते हैं, आपको पवन पुत्र भी बोलते हैं, उनके अलग अलग नाम है। हनुमान जी का नाम हनुमान कैसे आया पता है, आप में से कितने लोगों को पता है, नहीं पता नहीं। अरे हनुमान, जब हनुमान जी का जन्म होता है तो उनको जैसे ही जन्म होती है उन्हें भूख लगती है और वो लेटे हुए हैं और उनको खिड़की से सूर्य दिखाई देते हैं और उनको पता नहीं है कि वो सोचते कि कोई फल है शायद, एकदम लाल लाल सा चमक रहा है दूर से, उनमें तो बहुत शक्ति थी, तो वो क्या करते हैं सीधा खिड़की से बाहर कूदते हैं और सूर्य को पकड़ लेते मुंह में डालने के लिए, और सूर्य हाहाकार कर रहा है कोई तो बचाओ, ये बच्चा कहाँ से आ गया, मेरे को खाना चाह रहा है, मैं करूँगा क्या। और फिर इंद्र वहाँ पे राहु आता है, राहु देखता है कि अरे सूर्य को तो मैं खाना चाह रहा था, ये बीच में कहाँ से आ गया। फिर जाके इंद्र को बोलता है कि कोई और आ गया, मैं आज कुछ नहीं किया, वो सूर्य को निगल रहा है। और फिर इंद्र आते हैं उधर, अपने वज्र से जो है हनुमान को कंट्रोल करते हैं। अब ऑलरेडी सूर्य को जो वे खा रहे हैं तो सब अंधकार हो जा रहा है, तो दिखाई नहीं दे रहा है कौन है क्या है, वो जस्ट अपना वज्र फेंकते हैं, हनुमान जी को इधर लग जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। अब जैसे वो मूर्छित हो जाते हैं, वायु हनुमान जी के जो पिता है वो गुस्सा हो जाते हैं कि किसने मेरे बेटे को ऐसा किया, वो सीधा हनुमान जी को पकड़ते हैं, गुफा के अंदर जाते हैं, पूरी दुनिया की वायु को कंट्रोल कर लेते हैं एकदम, और सब जीव सांस नहीं ले पा रहे, देवता लोग सांस नहीं ले पा रहे, किसने ये सारी वायु को पकड़ लिया है, किसने ये ऐसा किया है। तो सबको समझ में आता है कि वायु देवता ने खुद अपने जो है वायु को बंद करके रखा है क्योंकि वो गुस्से में है। और फिर सारे ब्रह्मा के पास जाते हैं, अब क्या करें, ब्रह्मा जी बोलते हैं फिर चलो एक काम करते हैं, अब वो तो हमसे गुस्सा है तो अब हम सब मिलके एक एक करके उनके बेटे को जो है वरदान देते हैं, तो जब हम वरदान देंगे तो वो शांत हो जाएंगे। तो फिर सारे उधर चले जाते हैं, सारे देवता ब्रह्मा इंद्र अग्नि सारे उधर आ जाते हैं और एक एक करके सब हनुमान जी के सिर पे हाथ रख के, जो पहले तो ब्रह्मा जी पानी छिड़कते हैं, हनुमान उठ जाते हैं, और फिर एक एक करके सब, कुबेर अपनी गदा देता है तो इंद्र अपना वज्र देता है, तो ऐसा अलग अलग लोग उसको वरदान, कोई बोलते तुम में ये विद्या होगी, तुम में इतने हाथियों का बल होगा, तुम में ये माया होगी, तुम अनुमा लिघिमा गरिमा सारे अलग अलग अष्ट सिद्धि तुम में होगी, ऐसा सब उसको वरदान देते हैं। और फिर वायु खुश हो जाते हैं और फिर वो हवा को छोड़ देते हैं। तो क्योंकि वो ऐसे अपने चिन्ह के बिल पे, जैसे इसको जबड़ा बोलते हैं हिंदी में और हनु भी बोलते हैं, तो जैसे हनु के बल पे जब नीचे गिरते हैं तो यहाँ लग जाता है ना, ये डिफॉर्म हो जाता है, तो इसलिए उनका नाम पड़ जाता है हनुमान। हनुमान को ये भी कहा जाता है ना बजरंग बली, एक्चुअली बजरंग बली नहीं है वो वजरंग बली है, वज्र के समान उसका अंग तैयार हो जाता है, इतने शक्ति वाले। सो वजरंग बली, जिसका बल एकदम वज्र जैसा है। अब लोकल लैंग्वेज में बजरंग बली से बजरंग बली हो गया, हम लोग बजरंग बली बोलते हैं। मारुति भी बोलते हैं, मारुति माने मारुत, वायु का पुत्र। अब हनुमान जी कोई बोलते हैं वो शिव जी के अवतार है, कोई बोलते वायु के पुत्र है, कोई बोलते केसरी और अंजना के, अब है किन के पुत्र, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अब रामायण के भी बहुत अलग अलग वर्जन्स है, अलग अलग ऑथर्स, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग कमेंट्री दी है। उसका मतलब ये नहीं है कि किसी की सही होगी, किसी की कमेंट्री गलत होगी। इट्स जस्ट दैट हर एक कल्प में रामायण अलग तरह से होती है, हर एक समय। जैसे कृष्ण भी आते हैं तो अलग अलग स्टाइल से आते हैं। जैसे हम राधा रानी के जन्म के बारे में अलग अलग बहुत सारी कथा सुनते हैं, तो अलग अलग कल्प में अलग तरीके से होता है। कभी ऐसे आते हैं जन्म लेते हैं, तो कभी इस तरह से जन्म लेते हैं, तो इसलिए बहुत सारी स्टोरीज होती है। क्योंकि जब ऋषि लोग मेडिटेशन में बैठ के वो कहानी लिखते हैं, अब कोई गारंटी नहीं है कि उनको मेडिटेशन में किस कल्प में हुई रामायण दिखाई दे रही है, शायद लास्ट टाइम होने वाली, इसके पहले के त्रेता युग में होने वाली, तो इसलिए अलग अलग कथन होते हैं। तो किन कुछ लोगों का बोलना यह है, जैसे एक संत है एकनाथ जी, उनके रामायण में उन्होंने बताया है कि दशरथ जी ने पुत्र कामिष्ट यज्ञ किया था, तो जब यज्ञ पुरुष बाहर आए और हाथ में खीर लेके आए, अब खीर दशरथ को दे रहे थे, दशरथ उनकी तीनों रानियों को देंगे, उसके पहले वहां पे गरुड़ आते हैं और वो खीर का थोड़ा सा टुकड़ा लेके चले जाते हैं, और वो जो गरुड़ जी क्या करते हैं, वो खीर हाथ में लेके जो उड़े हैं, और यहाँ पे हनुमान जी की जो मदर है केसरी, सॉरी अंजना, हनुमान जी की मदर है जो अंजना, उनके उनके हाथों में छोड़ देते हैं, और फिर वो उसका पान करती है और फिर गर्भवती हो जाती है। तो बहुत सारे लोगों का कहना है कि ही इज पार्ट ऑफ लॉर्ड राम्स एनर्जी। अब कई रामायण में ऐसा दिया हुआ है कि ऐसा नहीं था, केसरी एंड अंजना दोनों पति पत्नी शिव जी की आराधना करते हैं और शिव जी प्रसन्न होके जो है उन्हें हनुमान जी प्रदान करते, इसलिए वो शिव जी के भी हुए और केसरी और अंजना के पुत्र हुए। अब कुछ का कहना है ऐसा नहीं है, मैंने एक जगह पढ़ा था, मुझे पता नहीं कितना ऑथेंटिक है, कि बहुत सारी इसके वर्जन्स हैं। मैंने एक जगह पढ़ा था कि कैलाश में एक बार शिव और पार्वती जो है, जैसे भगवान जो है कभी कभी अलग अलग फॉर्म लेके एंजॉय करते हैं, जिस तरह से हम सुनते हैं वृंदावन लीला में भी कृष्ण और राधा रानी कभी मयूर बन जाते हैं, मोर बन के दोनों नाचते हैं, ये कहानी आपने सुनी होगी बहुत बार कि राधा रानी और कृष्ण मोर बन के नाचते हैं, तो उस तरह से एक बार शिव जी और पार्वती जी भी दोनों कैलाश में वानर के रूप में आनंद लीला कर रहे थे, और उसी रूप में पार्वती देवी गर्भवती हो जाती है और फिर वो वानर के रूप से चेंज होके अपने निजी रूप में आ जाती है, और वो शिव जी से बोलती है कि मैं वानर के शरीर वाले बच्चे को जन्म नहीं देना चाहती, तो अब इसका क्या करे इस वीर्य का, तो शिव जी वायु को बुलाते हैं कि इसका कुछ करो, फिर वायु उसको ले जाके अंजना के गर्भ में देते हैं, तो इसलिए तीनों के बच्चे हुए। तो ऐसे अलग अलग वर्जन है हनुमान जी का। अल्टीमेटली हम उनको केसरी नंदन बोलते हैं, अंजनीय बोलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के गुणी है, सागर है, और स्पेशली जब इतने सारे देवता लोग उन्हें इतने सारी ब्लेसिंग्स दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं, जब पावरफुल हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाते हैं, सबको तंग करना शुरू कर देते हैं। अब सारे ऋषि मुनि जब तपस्या करते रहते हैं तो क्या करते हैं, जैसे कोई ऋषि झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, तब वो तो एकदम तपस्या में लीन है, तो हनुमान जी की तो बहुत शक्ति थी, तो झाड़ के साथ झाड़ को उठा के कोई पर्वत के ऊपर में जाके रख देते हैं। अब बेचारे ऋषि जब तपस्या से उठते देखते मैं पर्वत के ऊपर कहाँ से आ गया, मैं तो नीचे था, तो सबको उस तरह से तंग करते थे वो। तो एक बार किसी ऋषि को गुस्सा आ गया और उसने हनुमान जी को श्राप दे दिया, बोला तुम ये जो सब तंग कर रहे हो सबको तपस्या करने में, तो ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुमको बहुत ज्यादा शक्ति आ गई है। तो हम एक काम करते हैं, तुम अपनी ये सारी शक्तियों को भूल जाओगे, चली नहीं जाएगी, बस भूल जाओगे। जब तुम्हें कोई याद कराएगा तब तुम्हें शक्ति वापस मिल जाएगी। तो इसलिए भगवान हनुमान जी सब कुछ भूल जाते हैं, उन्हें उन्हें याद ही नहीं रहता है कि अच्छा मैं जंप कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। काफी हद तक अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं, ओनली अनलेस एंड अंटिल कोई उन्हें याद कराए, उन्हें याद नहीं आता। या सीखने वाली या समझने वाली बात यह भी है कि समटाइम्स अपेरेंटली जो चीज हमें लगती है कि हमारे साथ अच्छी नहीं हुई, मे बी लॉर्ड हैज ए बिगर प्लान फॉर दैट, राइट? जैसे हनुमान जी के साथ ऐसा हुआ, कोई सोच सकता अरे बेचारे उनको लग गया, या अरे बेचारे उनको उनके साथ में इंद्र ने ऐसा क्यों किया। लेकिन इंद्र ने उनको मूर्छित किया तो उनको क्या हुआ, बदले में क्या मिला? अनलिमिटेड ब्लेसिंग सारे देवी देवताओं से। सो इट्स जस्ट दैट लॉर्ड हैज ए हायर प्लान, भगवान का एक हायर प्लान होता है। हमें भगवान पे विश्वास होना चाहिए। हमारे जीवन में जो भी होता है ठाकुर जी का बहुत बड़ा प्लान होता है। हम कभी कभी डिसअपॉइंट हो जाता है, ऐसा क्यों हुआ, हम तो भक्ति कर रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ, बट ही हैज अ बिगर प्लान। भगवान पे विश्वास रखना चाहिए। तो यहाँ पे हनुमान जी के साथ सब अच्छा ही हुआ, उन्हें लग गया, लेकिन उनको कितने सारी अनलिमिटेड ब्लेसिंग्स मिली। एंड आगे चल के उन्होंने क्या किया, ये सारे ब्लेसिंग्स को भगवान की सेवा में उपयोग किया, राइट? इतनी जितनी भी शक्तियां उनमें थी, जो भी पावर्स थे, उन्होंने क्या किया, भगवान की सेवा में उपयोग किया। कभी कभी जो जिनके पास में बुद्धि शक्ति ज्यादा होती है वो थोड़े रेस्टलेस हो जाते हैं। जैसे हम कभी कभी देखते हैं बच्चे लोग बहुत नॉटी, जैसे मैं स्कूल चलाती हूँ तो मैं देखती हूँ बहुत सारे पेरेंट्स आके बोलते रहते हैं मैडम हमारे बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव है, बहुत नॉटी है। मैं उनको समझाते रहती हूँ कि आपके बच्चे नॉटी है, हाइपर एक्टिव है, मतलब स्मार्ट है। जो स्मार्ट है उसको तो कहीं अपनी एनर्जी को यूज करना है, इट्स जस्ट दैट उस एनर्जी को हमें राइट वे चैनलाइज करना है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे शैतानी इसलिए करते हैं क्योंकि आपको पता नहीं उनकी एनर्जी को आप कैसे गाइड करो, कैसे चैनलाइज करो। उनको आप कुछ काम दे दो तो फिर वो बिजी हो जाते हैं। शिला प्रभुपाद जी इस चीज में एक्सपर्ट थे। शिला प्रभुपाद बोलते थे ना, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, किस में क्या गुण है उस गुण को लेके प्रभुपाद जी उसको भगवान की सेवा में इस्तेमाल करते थे। छोटे से छोटा गुण भी, मैं बहुत बार आपको ये कहानी बता चुकी हूं ना कि एक चोर हरिदास प्रभु वो कैसे भक्त बन जाते हैं। और फिर एक दिन रात को प्रभुपाद जी के पास जाके बोलते कि प्रभुपाद जी पहले तो मैं चोर था, भक्त बनने से पहले तो मुझे रात रात भर जागने की आदत है क्योंकि रात को ही चोरी होती है, लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाता और रात पूरा रात में जागा रहता हूँ। और मैं देखता हूँ कि पूरा इस हरे कृष्ण लैंड में सब लोग गहरी नींद में सोए हुए हैं, सिर्फ मैं जागता हूँ और आप जागते हैं क्योंकि आप ट्रांसलेशन करते हैं, तो मुझे कुछ सेवा दीजिए। अब इमेजिन रात को किसी को क्या सेवा दे सकते हैं। प्रभुपाद जी उसको भी सेवा देते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं हाँ एक काम करो, मैं जब ट्रांसलेट करता हूँ, प्रभुपाद जी जब ट्रांसलेट करते थे उनके पास भी डिक्टाफोन था, तो वो जो भी ट्रांसलेट करते वो फोन में बोल देते हैं और नेक्स्ट डे मॉर्निंग उनके शिष्य जो है उसको फिर से रिकॉर्डिंग को सुनते थे और उसको टाइप करते थे। लेकिन रात को क्या होता है, वो जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना भौंकते रहते हैं, तो हमेशा वो रिकॉर्डिंग में वो भौंकने की आवाज भी आ जाती थी, मतलब कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, इट भाव भाव, फिर और एक लाइन, फिर भाव भाव। तो प्रभुपाद जी ने बोला तुम एक काम करो, तुम पूरा रात जो है लकड़ी लेके कुत्ते जो आते रहते ना उनको भगाओ। और उन्हें बहुत अच्छा लगा, थैंक यू प्रभुपाद, दिस इज गुड, ऐसे भी मुझे नींद नहीं आती है। तो वो रात भर जो है कुत्ते लोगों को वहां से भगाते रहते। तो प्रभुपाद जस्ट न्यू किसको किस तरह से भगवान की सेवा में उपयोग किया जाए। तो यहाँ पे हनुमान जी के पास भी बहुत सारी शक्ति थी और फिर बचपन में वो शक्ति वो भूल गए। और हालांकि वो अच्छा हुआ क्योंकि कभी कभी शक्ति होने से अहंकार भी आ जाता है ना, अहंकार भी आता है। तो फिर क्योंकि उनके पास से शक्ति है वो भूल गए थे, तो वो सबमिसिव हो गए, वो हम्बल हुए, और जब जरूरत पड़ी तब जाम्बवान ने उनको उनकी शक्ति के बारे में याद कराया। नेक्स्ट श्लोक में चले जाते हैं। महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा। बोले महावीर विक्रम बजरंगी, हे बजरंग बली आप महावीर है, आप विशेष पराक्रम वाले है। कुमति निवार सुमति के संगी, आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ संग करते हैं, जो बुरे लोग हैं आप उनसे दूर रहते हैं। कंचन वरण विराज सुवेसा, आपका जो शरीर का रंग है वो कंचन सोने जैसा गौरांग कलर है, और कानन कुंडल कुंचित केसा, कान में आप कुंडल पहनते हो, सुशोभित हो, आपके बाल घुंघरालू है, तो उनके बारे में बता रहे हैं। बहुत सुंदर पॉइंट, जो भक्त है वो कुसंग नहीं करेंगे, हमें कुसंग से डरना चाहिए, जो अभक्त है उनके साथ संग नहीं करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये किन के साथ एसोसिएट करते थे हनुमान जी? हमेशा सुग्रीव के साथ रहते थे, राइट, वो वाली के साथ। सी वाली सुग्रीव दोनों ही देवता के पुत्र है, लेकिन वाली गलत काम करने लगा था तो हनुमान जी ने उनका एसोसिएशन नहीं लिया और वो सुग्रीव के साथ। ऑफ कोर्स और एक भी रीजन है सुग्रीव का एसोसिएशन लेने का, जब हनुमान जी थोड़े से बड़े हुए उन्हें स्कूल में जाना था एजुकेशन के लिए, तो जैसे हायर एजुकेशन के लिए जाना था, तो वो सच में हायर चले गए, सूर्य के पास चले गए एजुकेशन के लिए। तो सूर्य ने बोला कि मैं कैसे पढ़ा सकता हूँ, मैं तो बिजी हूँ, मैं अगर बैठ के तुम्हें पढ़ाऊंगा तो फिर घूमेगा कौन, मुझे तो घूमना है, सबको लाइट देनी है। तो हनुमान जी ने बोला कोई बात नहीं, आप घूमिए, मैं भी आपके साथ घूमते घूमते ही पढ़ूंगा। बोले तुम घूमते घूमते कैसे पढ़ोगे? तो बोला आपका रथ जैसे जैसे चलेगा मैं पीछे पीछे चलूंगा आपके तरफ देखते हुए। और ऐसे ही हनुमान जी ने पूरा ज्ञान लिया, वो ऐसे पीछे पीछे चलते थे, सूर्य का रथ ऐसे आता था और सूर्य से क्वेश्चन आंसर करते थे और पढ़ाई करते थे। और फिर अल्टीमेटली जब पढ़ाई पूरी हुई तो हनुमान जी ने बोला कि मैं क्या दूं गुरु दक्षिणा में, और फिर सूर्य ने बोला कि तुम मेरे बेटे सुग्रीव का ध्यान रखो। सी उस जमाने में पहले गुरु से पढ़ाई ले लेते थे, शिक्षा ले लेते थे, उसके बाद गुरु दक्षिणा देते थे। आजकल पहले स्कूल में फीस पे करना पड़ता है, उसके बाद गुरु ज्ञान देते हैं, पहले फीस पे करो उसके बाद अंदर आओ। नहीं, पर गुरुजी लोग की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आजकल अगर फीस ना मांगे तो वो तो फ्री में पढ़ के चले जाएंगे, उन्हें कोई दक्षिणा देने का कोई। सी गुरु दक्षिणा का मतलब है फीस ऑफ ग्रैटिट्यूड, यू आर इमेंसली फीलिंग ग्रेटफुल कि आपने मुझे ज्ञान दिया, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, ये फीलिंग होनी चाहिए। एक्चुअली इट्स नॉट ए मैकेनिकल प्रोसेस कि अरे कुछ तो देना है, इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स फ्रॉम योर हार्ट दैट हाउ कैन आई सर्व यू। फिर वो पूछते हैं और सूर्य बोलते हैं कि तुम सुग्रीव का ध्यान रखो। ऑफकोर्स ये सुग्रीव और वाली की भी बहुत सारी कहानियां हैं। एक्चुअली मैंने एक जगह पढ़ा था कि गौतम मुनि और अहल्या के दो बेटे और एक बेटी थी, दो बेटे थे सुग्रीव वाली और बेटी थी अंजना, मैंने कहीं पढ़ा था ये। और वे अपने पति के साथ में तुंगभद्रा नदी में स्नान करने के लिए जा रहे थे ऑन ए वेकेशन। तो जब वे जा रहे थे तो ये गौतम मुनि ने क्या किया, सुग्रीव को और वाली को यहाँ बिठा दिया और अंजना अपने माताजी के साथ में पीछे वॉकिंग करके आ रही है। अब धूप बहुत ज्यादा थी तो सडनली बीच में अंजना बोली, पिताजी जो बच्चे आपके नहीं है उनको इतना प्यार दिखा रहे हो और जो आपकी अपनी बेटी है उसको धूप में चला रहे हो। तो इनको समझ में आया कि क्या बोलना चाहती हो, मेरे बच्चे नहीं है। तो इमीडिएटली गुस्से में उन्होंने क्या किया, दोनों बच्चों को पकड़ा, तुंगभद्रा नदी में डाला, बोला मेरे बेटे हैं तो नदी वापस देगी, मेरे नहीं है तो वानर बन के उस तट से निकलेंगे। तो वानर बन के उस तट से निकले, तो फिर वो पीछे टर्न हुआ अपनी पत्नी के कि मेरे बच्चे नहीं है। और फिर अहल्या बताती है कि नहीं, एक सूर्य का पुत्र है सुग्रीव और एक इंद्र का पुत्र है, और मेरी गलती नहीं है, मुझे ये लोगों ने जो है आपके रूप में आए थे और मेरे साथ छल किया था। तो फिर उनको श्रापित करते हैं और वो शिला बन जाती है। कुछ जगह में बताया गया है कि नहीं ऐसा नहीं है, इंद्र आए थे गौतम मुनि का रूप लेके और फिर उन जो है जो हम रेगुलर स्टोरी सुनते हैं। कहीं और एक इंटरेस्टिंग कथा मैंने सुनी थी कि उग्र तप नाम के एक ऋषि थे, बहुत अच्छा तपस्या करते थे, और उनकी एक पत्नी थी नारायणी, और ये काफ़ी ओल्ड थे, वीक थे, चल नहीं पाते थे, तो उनकी पत्नी उनको एक बुट्टे में सिर पे लेके घूमती थी, जहाँ भी वो जाना चाहे, कहीं तपस्या करना चाहे, कोई और वन में जाना चाहे। तो एक दिन नारायणी उनको लेके चल रही है, उनके पैर बुट्टे से जो है, जो बुट्टे में वो बैठे, बाहर लटक रहे हैं। तो पैर बाहर में लटक रहे थे तो एक ऋषि जो तपस्या कर रहा था उसके सिर पे लग गया, गलती से लगा था। अब ये ऋषि को गुस्सा आ गया कि पैर मेरे सिर पे लगा दिए हैं, जाओ, तुम कल का सूरज नहीं देखोगे, तुम मर जाओगे। अब नारायणी ने बोला कि देखो, मैंने जान मुझ के तो नहीं हुआ मेरे पति से ये गलती, वो बुट्टे के अंदर बैठे, उनको पता भी नहीं उनका पैर कहाँ लग रहा है, ये सब मैं नहीं सुनूंगा। तो नारायणी ने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, मैं इतनी पतिव्रता स्त्री हूं, अगर आपने बोला कि कल का सूर्य आने से वो मरेगा ना, कल का सूर्य आएगा ही नहीं, कल का सूर्य आएगा ही नहीं, तो वो सूर्य को बोलती कि खबरदार, तुम कल अगर आए तो बाहर नहीं निकलना है। तो दूसरा दिन सुबह जो सूर्य के ड्राइवर थे अरुण जी, वो रेडी हुए, घोड़े को पानी वानी पिला रहे, चलिए। तो सूर्य जी बोल रहे, आज हम कहीं नहीं जा रहे, आज हम वेकेशन पे है। अरुण बोलते, ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो हमेशा चलते रहते हैं 365 डेज, हमें वेकेशन कैसे मिल सकता है। बोलते नहीं नहीं, नीचे एक पतिव्रता स्त्री ने जो मुझे रोक के रखा है कि खबरदार तुम निकले तो मैं नहीं निकल सकता, हम लोग यहाँ वेकेशन पे है। तो अरुण जी बोलते, ये तो बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, मुझे तो कभी वेकेशन नहीं मिलता है, चलो मैं अपना एंजॉय करके आता हूँ। बोलते कहाँ जाओगे? बोलते कहीं तो जाऊंगा, कहाँ ना, स्वर्ग में तो सब जगह पार्टी चलते रहती है, तो उसे मैं इंद्र की पार्टी में जाऊंगा। जब इंद्र की पार्टी में अंदर जाएंगे तो वहां सैनिक लोग बोलते हैं कि इन्विटेशन कार्ड है तुम्हारे पास, ऐसा कोई भी आ नहीं सकता अंदर, तुमको किसने इन्वाइट किया? बोले इन्विटेशन कार्ड तो नहीं। बोले इन्विटेशन कार्ड नहीं, तुम अंदर नहीं आ सकते। तो वो रिक्वेस्ट करता है, जैसे यहाँ हमारे इंडिया में ब्राइब वाइब का होता है ना, अरे भेजो, मेरे को मुश्किल से वेकेशन मिला, थोड़ा अंदर में पार्टी देख के आऊंगा। अब सैनिक लोग बोलते तुमको अंदर में पार्टी देखनी है तो एक काम करो, ये अपना जो शरीर है चेंज करके ब्यूटीफुल अप्सरा बन जाओ, ऐसे ही इंद्र तुमको अंदर जाने देगा। बोला थैंक यू फॉर द टिप। इमीडिएटली वो अपने आप को जो अरुण है वो एक लड़की बन जाती है, अरुणी, एक सुंदर अप्सरा बन जाती है। फिर सोल्जर बोलता है, हाँ सुंदर लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए तो ऑलवेज यहाँ पे एंट्री फ्री है, आप जा सकते हैं। अब जाके पूरा पार्टी वो एंजॉय कर रहा है, देख रहा है क्या होता है यहाँ पे, कैसे कैसे आती है पार्टी में, क्या क्या खाते हैं वो लोग, कितना एंजॉय करते हैं देवता लोग। अब जब पार्टी पूरी खत्म हो जाती है तो इंद्र इनको बोलते, कह रहे आप तो बहुत सुंदर है, आइए मैं आपको आपका रानी बना दूंगा मेरा। वो बोलते हैं कि आप जो समझ रहे हो, मैं वो नहीं हूँ, मुझे जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, अब तो तुम नहीं जा सकते, तुमको यहीं रहना पड़ेगा, इतनी सुंदर, पहले कभी ऐसा सुंदर स्त्री को मैंने देखा नहीं। तो उसके बाद में क्या होता है, इंद्र उसे गर्भवती कर देता है, तो अरुणी को जो है इंद्र का बच्चा वाली। और फिर वो जब सूर्यदेव के पास वापिस पहुंचते हैं तो उसी हालत में पहुंचती है एज ए स्त्री, तो वहां पे सूर्य जी के साथ में संभोग होता है और फिर जो है सुग्रीव का जन्म होता है और फिर वो अपने निज रूप में आ जाते हैं, ऐसी कहीं मैंने कथा सुनी थी। तो अलग अलग कथाएं हैं सुग्रीव और वाली की, बट फॉर श्योर वन थिंग है, सुग्रीव सूर्य के पुत्र थे और वाली इंद्र के पुत्र थे। तो सूर्य ने हनुमान जी से बोला था कि गुरु दक्षिणा में मुझे एक ही चीज चाहिए, मेरे बेटे सुग्रीव का तुम ध्यान रखो। तो हमेशा हनुमान जी जो है सुग्रीव के साथ में रहते थे। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कुमति निवार सुमति के संगी, हमेशा अच्छे लोगों के साथ हनुमान जी रहते थे, अच्छे एसोसिएशन में रहते थे। नेक्स्ट लाइन में चले जाते हैं, हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। बहुत सुंदर, यहाँ पे बोले हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, आपके हाथ में वज्र और ध्वजा रहती है, कांधे मूज जनेऊ साजे, आप जनेऊ पहनते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, आप केसरी के नंदन है, आप शंकर के अवतार है, हे केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, आपके तेज का सारे जग में सब प्रणाम करते हैं। ये जनेऊ से एक बात याद आई, कैसे जब राम जी और लक्ष्मण जी सीता माता को ढूंढते हुए आते हैं और काबंध नाम के एक राक्षस का वध करते हैं, और फिर काबंध बोलता है कि अगर आपको सीता जी का पता चाहिए तो आप पहले सुग्रीव के साथ मित्रता करिए, और वो सुग्रीव को ढूंढते हुए आते हैं और सुग्रीव दूर से देखता है कि ये दो वनवासी मेरे तरफ क्यों आ रहे हैं, इनको मुझसे क्या काम है, मेरी जगह में क्यों आ रहे हैं। सुग्रीव जो है बहुत डर के जीता था। प्रॉब्लम ये था कि सुग्रीव और वाली की फाइटिंग हो गई थी, अब वाली सुग्रीव से ज्यादा शक्तिशाली था, वाली कभी भी सुग्रीव को मार सकता था। तो सुग्रीव ने क्या किया था, बहुत सेफ प्लेस में वो छुप के रहता था, वो था मतंग मुनि का आश्रम जो पंप सरोवर के पास था। अब ये जो मतंग मुनि है उनकी भी बहुत बड़ी कहानी है, कैसे जब मतंग मुनि अपने आश्रम में तपस्या करते हैं तो बहुत पहले की बात है, और वाली जो है दुंदुभि नाम का एक राक्षस के साथ झगड़ा करता है, उसका वध करता है, और दुंदुभि की डेड बॉडी को जो है वो फेंकता है, तो फेंकने से उसका जो मृत शरीर है वो मतंग मुनि के आश्रम में गिरता है। मतंग मुनि को गुस्सा आता है कि मेरे आश्रम को किसने अपवित्र किया, तो वो घोषणा करते हैं कि जिसने भी ये शव मेरे आश्रम में फेंका है, अगर वो मेरे आश्रम के कुछ किलोमीटर रेडियस में भी आएगा तो भस्म हो जाएगा। तो इमीडिएटली आकाशवाणी से ये बात वाली को पता चल जाती है, तो इसलिए वो कभी भी मतंग मुनि के आश्रम के आसपास नहीं जाता। अब वाली से बचने के लिए ये क्या कर रहा था सुग्रीव, वो मतंग मुनि के आश्रम के पास ही रहता था कि वाली वहां आ ना सके, और डर डर के रहता था और देखा कि ये लोग यहाँ क्यों आ रहे, क्या है इसका रीजन। अब हनुमान जी उनके मिनिस्टर थे तो इमीडिएटली हनुमान जी को भेजते कि जाके फाइंड आउट करो। मतंग मुनि, अगर आपको याद है जब नाम रामायण की चर्चा हो रही थी तब मैंने आपको बताया था शबरी मतंग मुनि के आश्रम में सेवा करती थी, याद आए? शबरी जो है मतंग मुनि की शिष्या थी। तो अब ये मतंग मुनि के आश्रम में छुपा हुआ है उसके आसपास में, और फिर हनुमान जी अब सोचते हैं कि मैं क्यों अपने निज रूप में जाऊं, वो मुझे पहचान लेंगे। तो वो ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, एकदम वो वेद वगैरह पकड़ के जाते हैं एकदम अच्छा से, और जाके पूछते हैं कि आप लोग कहाँ से आए, कौन है। और फिर राम जी लक्ष्मण पूछना शुरू करते हैं कि भाई आप भले मानुष लग रहे हैं तो क्या आप मुझे हमें बता सकते हैं कि सुग्रीव कहाँ रहते हैं। तो हनुमान जी पूछते हैं आपको सुग्रीव से क्या काम है। नहीं, वो हम सुग्रीव को ही बताएंगे, लेकिन जाना कैसे है। तो हनुमान जी बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, आपको सुग्रीव से काम क्या है, आप क्यों आएंगे, आप कौन से कुल के हैं, आपको यहाँ आने का प्रयोजन क्या है, सुग्रीव से क्या बात करना चाहते हैं। तो लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आता है, वो बोलते हैं कि भैया चलो चलते हैं, क्योंकि ये जो ब्राह्मण है लगता है उनके गुरु जी ने सिर्फ उनको प्रश्न पूछना ही सिखाया है, उत्तर देना तो सिखाया ही नहीं है, कोई बात का उत्तर ही नहीं देते, प्रश्न ही पूछते रहते, प्रश्न ही पूछते रहते। हम पूछ रहे हैं ना सुग्रीव के पास कैसे जाना है, और हनुमान जी जवाब नहीं दे रहे। किम प्रयोजन, संस्कृत में बोल रहे, बड़े 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 संस्कृत के पदों में बोल रहे, किम प्रयोजन, क्यों जाना है तुमको, क्या पहले हमको बताओ। तो फाइनली लक्ष्मण जी बोलते हैं कि तुम तो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करो, जैसे कि यू नो तुम, अगर हम तुम्हें बता देंगे तो तुम इमीडिएटली सुग्रीव के पास ले जाओगे। तो हनुमान जी बोलते हैं हाँ 100% तुमको ले जाएंगे, तो फिर पहले आपका इंट्रोडक्शन दो। तो फिर लक्ष्मण शुरू करते हैं कि ये राम है, हम दशरथ के बेटे हैं। और इमीडिएटली हनुमान जी जैसे ही राम का नाम सुनते वैसे निज रूप में आ जाते हैं और रोने लगते हैं, बोलते कि मुझे पता नहीं था आप ठाकुर जी है, मैं तो ऐसे ही आपका बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछने लगा। और फिर राम जी बहुत मीठी तरह से जो है आंसर देते हैं वन बाय वन, और हनुमान जी बोलते हैं कि मैं समझ गया मुझसे गलती क्यों हुई, मैं अपना पांडिताई दिखा रहा था ना आपको, संस्कृत में बड़े बड़े क्वेश्चन, जहाँ ईगो होता है वहाँ ठाकुर जी दास से दूर हो जाते हैं, तो इसलिए शायद आप, मैं समझा ही नहीं आपको। और फिर भगवान हनुमान जी को बहुत अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं, हनुमान जी को बोलते हैं कि तुम्हारी वाणी बहुत मीठी है, बहुत अच्छे से बोलते हो। तुलसीदास जी बोलते हैं कि ठाकुर जी को जो मीठी वाणी वाले होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें मीठी वाणी बोलने वाले बहुत अच्छे लगते हैं। सीता जी भी बहुत मीठा बोलती थी, सीता जी बहुत मीठा बोलती थी, इसलिए राम जी को सीता पे विशेष आकर्षण था। एज डिवोटीज हमें भी बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हमारी वाणी कैसी है, कभी भी कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। शास्त्र में आता है कि कटु वचन कलयुग की जननी है, कटु वचन से कलयुग शुरू हुआ है, कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। जो कटु वचन बोलते हैं भगवान उन्हें पसंद नहीं करते। आजकल के भौतिक जगत में अगर हम किसी का मजाक उड़ा पाए, किसी को हम नीचा दिखा पाए, या हम किसी पे व्यंग कर सके, या हम कोई बहुत ही विटी आंसर दे सके, तो हम सोचते हैं कि हम कितने महान हैं। लेकिन हालांकि ठाकुर जी तो उनको पसंद करते हैं जो बहुत सरल है, जिनकी भाषा बहुत मृदु है, मीठी है। सीता जी की भाषा भी बहुत मीठी थी। जब सीता स्वयंवर हो जाता है, राम जी जीत जाते हैं, तो जनक महाराज दशरथ जी को एक लेटर लिखते हैं, और वो लेटर को पकड़ के जो है जो दूत होता है वो जनक दशरथ जी के पास जाता है कि मैं ऐसे मिथिला से आया हूँ और हमारे महाराज ने आपके लिए ये मैसेज भेजा है। तो जैसे दशरथ महाराज खोलते हैं बहुत खुश होते हैं, बिकॉज वो इतने दिन से चिंता में थे कि विश्वामित्र मेरे बेटे को लेके गया, लेकिन कहाँ लेके गया, कहाँ है वो लोग। और जैसे ही खोलते हैं उनको पता चलता है कि राम जी जो है स्वयंवर जीत चुके हैं और अब उनको बुला रहे हैं बारात लेके और अब शादी होगी, तो इतने खुश होते हैं, इमीडिएटली अपना जो हार होता है कॉस्टली सा हार निकाल के सीधा उस सेवक को बोलते कि ले लो, तुमको मैं गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो वो सेवक इमीडिएटली बोलता है कि मैं नहीं ले सकता। तो बोलते तुम क्यों नहीं ले सकते, मैं खुशी से दे रहा हूँ। बोलते नहीं, हम लड़की वाले हैं ना, इसलिए हम नहीं लेते लड़के के घर में। तो दशरथ महाराज बोलते हैं कि अच्छा, जनक महाराज या उनकी पत्नी वो ना ले तो समझ में आती है, तुम तो उनके नौकर हो, नौकर के साथ ऐसा कुछ नहीं होता, तुम ले सकते हो, नौकर तो हर जगह ले सकते हैं। और फिर वो जो सेवक होता है बहुत सुंदर तरीके से बताता है, बोलते हैं कि हमारी जो सीता जी है वो सबसे मृदु से बात करती है, सबसे मीठी तरीके से बात करती है, घर के नौकरों से भी मीठी तरीके से बात करती है। तो आपने तो हमें नौकर बोला लेकिन सीता जी हम कभी नौकर माना ही नहीं। बोलते हमें तो सीता जी हमेशा अपना पिता समान मानती है। तो बोलते क्योंकि सीता जी हमें पिता समान मानती है इसलिए हम भी सीता जी को बेटी मानते हैं, इसलिए हम बेटी के घर से कुछ नहीं लेंगे, इसलिए हम आपसे ये माला नहीं लेंगे। और फिर दशरथ बहुत शौक हो जाते हैं और फिर वो सेवक वन बाय वन सीता जी के सारे गुण बताते हैं और उसमें से एक गुण वो बताते हैं कि सीता माता जो है वो हमेशा मधुर बोलती थी और वो इतना मधुर बोलती थी कि उनकी मधुर वाणी के वजह से जनकपुरी में जितने भी सेवक थे, जितने भी पक्षी थे, पशु थे, हर एक जीव को सीता जी से लगाव था। तो जब सीता जी की विदाई होती है तो जनकपुरी में सब रोते हैं, सेवक लोग तो रोते ही है, पक्षी भी रोते हैं, पशु भी रोते हैं, सारे रोते हैं कि सीता जी चली जा रही है। तो उनकी भाषा इतनी मीठी थी और जिनकी भाषा मीठी होती है भगवान उन्हें प्रेम करता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, भगवान हनुमान जी को प्रेस कर रहे हैं, बोले तुम्हारी भाषा बहुत मीठी है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। फिर जब हनुमान जी अपने निज रूप में आ जाते हैं तब वो क्या करते हैं, राम और लक्ष्मण दोनों को अपनी भुजाओं में लेते हैं और उड़ के सुग्रीव के पास लेके जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। सिर्फ हनुमान जी की कथा तो हम बहुत बार सुन चुके हैं लेकिन कथा में से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम अपने जीवन में अपना सके, एज ए डिवोटी हमें केयरफुल रहना चाहिए। कभी कभी हम जब भी ठीक से कर लेते हैं, सब कुछ फॉलो करते हैं लेकिन जो सटल कल्चर्स है, वैष्णव कल्चर्स, उसी में हम गलती कर लेते हैं। भाषा वाणी हमारे मुंह से क्या निकलती है कितनी इम्पोर्टेंट है। कभी हम अगर किसी को मार दे एक दो थप्पड़ तो वो 10-15 मिनट तक दर्द होगा, उसके बाद में वो भूल जाएंगे, लेकिन कभी अगर किसी को हम कटु वचन बोल दे तो शायद वो जिंदगी भर ना भूले। महाभारत का पूरा युद्ध शुरू हुआ क्योंकि द्रौपदी ने कटु वचन बोले। द्रौपदी ने क्या बोला दुर्योधन को, अंधे का पुत्र अंधा, और बस उस लाइन से पूरी महाभारत की युद्ध शुरू हुई। सो वन हैज टू बी सो केयरफुल कि हम क्या बोल रहे हैं। नेक्स्ट उसमें चले जाते हैं, विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान गुणी अति चातुर, आप में विद्या है, गुण है, आप बहुत चतुर हैं। राम काज करिबे को आतुर, राम जी की सेवा करने के लिए आप हमेशा आतुर है। मैं अभी बता रही थी कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों में शायद बहुत सारे गुण हो लेकिन हम में ये गुण है उसका अभिमान होता है, लेकिन हनुमान जी में अभिमान नहीं था। जब ये राम और लक्ष्मण को सुग्रीव से मिलने के लिए ले जाते हैं तो सुग्रीव राम जी को स्थान देते हैं बैठने के लिए, लेकिन लक्ष्मण को स्थान नहीं देते हैं। तो सुग्रीव बैठते हैं राम जी के समान, इक्वली खुद भी सीट में बैठते हैं और राम जी को भी सीट देते हैं बैठने के लिए। लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता, सुग्रीव को नीचे बैठना चाहिए था और लक्ष्मण को तो सीट ही नहीं देते हैं। फिर हनुमान जी देखते हैं कि लक्ष्मण को सीट नहीं दिया है तो इमीडिएटली वो क्या करते हैं, एक बड़ा सा पत्ता तोड़ के लाते हैं और ऐसा लक्ष्मण जी के लिए सीट तैयार करते हैं और वो नीचे बैठ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कैसे हमें डिवोटीज को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सुग्रीव को रेस्पेक्ट करना ठीक से नहीं आया इसलिए सुग्रीव को पनिशमेंट भी तो मिला ना। सुग्रीव को पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट मिला, जब फर्स्ट टाइम राम ने बोला कि मैं वाली को मारूंगा तुम जाके वाली को ललकारो, तो सुग्रीव ने जाके वाली को ललकारा, दोनों का फाइटिंग हुआ, वाली तो शक्ति वाला ज्यादा था और वो सुग्रीव को दे धनाधन मार रहा है और सुग्रीव वेट कर रहा है कि राम जी ने बोला था ना वाली को मारेंगे, पीछे से मार क्यों नहीं रहे हैं। अब फाइनली वो तंग आ जाता है, इतना मार खा चुका होता है, बोलता है सॉरी सॉरी मैं डिफीटेड, गेम खत्म हो गया, वो भाग के आ जाता है। फिर राम जी को पूछता है कि आपने मारा ही नहीं, आप तो बड़े धोखेबाज निकले, आपने बोला था कि झाड़ के पीछे से आप बाण मारोगे इसलिए मैं एकदम कॉन्फिडेंटली गया, आपने मारा ही नहीं, आप कैसे इंसान है। फिर राम जी बोले नहीं नहीं मैं मारना चाह रहा था लेकिन तुम दोनों एकदम ट्विन्स हो ना, देखने में सेम हो, मुझे समझ में नहीं आया मैं किसको मारूं, कल कहीं गलती से मैं तुमको ना मार दूं इसलिए मैंने नहीं मारा। अंदर में तो राम जी बोले थे अच्छा हुआ थोड़ा सा 2-4 मिली, लक्ष्मण को दिया नहीं जैसे सीट, थोड़ा तो पनिशमेंट मिलना चाहिए। उसके बाद वाली ने बोला मैं और नहीं जाऊंगा कल युद्ध में। फिर राम जी उसको भरोसा देते, उसके भी एक बहुत अच्छी कहानी है कैसे वो राम जी के टेस्ट लेता है कि आप यहाँ पे बाण मारो, बहुत बहुत सारी लंबी कहानी है, हम ये कहानी लेंगे तो हनुमान चालीसा खत्म नहीं होगी। फाइनली नेक्स्ट डे राम जी बोलते देखो इस बार ऐसा है मैं तुमको एक माला पहना रहा हूँ, तो फिर वो माला से मुझे पता चलेगा सुग्रीव कौन है और वाली कौन है। और फिर नेक्स्ट डे जब वो माला पहन के फिर से जाता है ललकारने के लिए वाली को, इस बार राम जी जो है झाड़ के पीछे से वाली को बाण मार देते और वाली मर जाता है। तो ये बोले विद्यावान गुणिया जन, हनुमान जी बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे, उन्हें पता था कैसे रेस्पेक्ट करना चाहिए कैसे, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार रामानुजाचार्य की ये कथा भी बता चुकी हूँ, कैसे रामानुजाचार्य जब एक शहर में जाते हैं अपने शिष्यों को मिलने के लिए, तो उस शहर में दो शिष्यों की फैमिलीज है। अब वो कंफ्यूज थे कि मैं किनके घर जाऊँ, तो आप पहले ही अपने शिष्यों को भेज देते, बोलते कि तुम इसके पास जाओ और बताओ कि मैं आ रहा हूँ, इसके पास भी जाओ बताओ कि मैं आ रहा हूँ। तो दोनों गए शिष्य के पास, इसके पास भी गए, ये बहुत धनवान था, बोला कि गुरु जी कल आपके घर में आ रहे। अच्छा हमारे घर में आ रहे, इतना खुश, इतनी सारी प्रिपरेशंस, ऐसे बात करने के लिए भी एक मिनट रुके नहीं। फिर जो एक गरीब डिसाइपल था उनके घर में गए, बोले गुरु जी आपके घर में आ रहे कल, तो इमीडिएटली उसने बोला कि अच्छा बहुत खुशी है, आप बैठिए आप पानी पियेंगे, आपको हम क्या दें, पहले उनकी सेवा की। तो फिर जब वो वापिस आके रामानुजाचार्य को ऐसा बताते हैं कि मेरे इस शिष्य ने क्या बोला, बोला गुरुजी वो तो इतने एक्साइटेड थे, पागल हो गए, तोरण मंगाने लगे, सेवकों को भेजने लगे आपके लिए सारी प्रिपरेशन करने के लिए। तो रामानुजाचार्य बोलते नहीं नहीं वो सब नहीं, तुमको क्या दिया, तुमको आसन दिया बैठने के लिए, नहीं हमको तो कुछ नहीं पूछा। और फिर जब वो गरीब शिष्य के घर गए तो उसने क्या किया, बोला उसने पहले हमें आसन दिया, चरण धोए, पानी पिलाया, प्रसाद पूछा और बोले कि अच्छा अच्छा मैसेज दिया। तो फिर रामानुजाचार्य बोले मैं उसके घर जाऊंगा, क्योंकि उसे वैष्णव को कैसे रेस्पेक्ट करना है आता है। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं गुरु को रेस्पेक्ट करता हूँ तो काफी है, मुझे दूसरे वैष्णवों को रेस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी डांट देंगे तो कोई बात नहीं, मैं सामने जवाब नहीं दूंगा, गुरु जी कुछ बोलेंगे तो करूंगा, लेकिन दूसरे कोई मेरे साथ में रॉन्ग करेंगे तो मैं सहन नहीं कर, नहीं, सबके साथ उतना ही रेस्पेक्टफुल रहना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वैष्णव है उनका जो सदाचार है वो बहुत ही सटल है, हर एक चीज को वो ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों को ध्यान रखते हैं, छोटी छोटी बातों को भी ऑब्जर्व करते हैं कि हमारे वजह से कोई और इनकन्वीनियंस में तो नहीं है, हमारे वजह से किसी और को तकलीफ तो नहीं हो रही है, बहुत सेंसिटिव होता है। मैं बहुत बार ये कहानी बता चुकी हूँ कैसे संत एकनाथ जी बहुत फेमस थे, इतने अच्छे डिवोटी, सब उनको बहुत पसंद करते थे, सारे जीवों पे उनके ऊपर में उनकी दया थी, कभी किसी के साथ कोई फाइटिंग नहीं, बहुत ही प्यारे। तो एक दिन वे चपाती बना रहे थे और घी लगा के रेडी कर रहे थे और वहाँ पे एक कुत्ता आ जाता है, और जैसे वो चपाती प्लेट पे रखते हैं वो कुत्ता चपाती लेके भागता है, एकनाथ जी उसके पीछे भागते, चपाती दे दो चपाती दे दो। पूरे गांव के लोग देखते ये पागल तो नहीं हो गया, ये चपाती के लिए कुत्ते के पीछे, सारे बोले छोड़ दो वो चपाती, नहीं 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 चपाती दे दो चपाती दे दो। फिर सबने उसको पकड़ा कि छोड़ दो भाई, कुत्ता चपाती लेके चला गया, छोड़ दो मैं दे देता हूँ। अरे ये तुमको समझ में नहीं आया, वो चपाती में मैंने घी नहीं लगाया था, वो बेचारा घी के बिना लेके चला गया, मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ घी लगा के दूंगा, उसमें घी नहीं है। जो भक्त होते हैं ऐसी होती है उनकी सेंसिटिवनेस, हर एक जीव को वो प्यार करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ लव, जैसे बोलते ना केक या शुगर का जो पाई होता है, इट्स मेड अप ऑफ शुगर, दैट्स इट, डिवोटीज आर मेड अप ऑफ दैट। हमेशा दूसरों की मदद कैसे करें, हम दूसरों को कैसे हेल्प करें, ये डिवोटीज का एक सटल नेचर है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि जैसे हनुमान जी ने सेंसिटिविटी दिखाई ना, उन्होंने दिखाई, उन्हें आसन दिया लक्ष्मण को, बट सुग्रीव को ये सेंसिटिविटी नहीं थी। सो प्रभु चरित्र सुनी बे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम लक्ष्मण सीता को हमेशा अपने हृदय में रखने वाले हनुमान जी को हमारा प्रणाम है। प्रभु चरित्र सुनी बे को रसिया, उन्हें राम जी का चरित्र सुनने में आनंद आता है। हमें सबको पता है उसके बाद कैसे सुग्रीव टीम्स बनाते हैं, और फिर हनुमान जी और जाम भवान और अंगद सब जगह जाके सीता जी को ढूंढते हैं, कहीं नहीं मिलती है। अल्टीमेटली वो लोग सोचते हैं चलो सुइसाइड कर लेते हैं, क्योंकि मर जाए तो ठीक है, क्योंकि हम वापस जाएंगे राम जी को बोलेंगे सीता जी नहीं मिली तो राम जी दुखी हो जाएंगे, राम शायद अपना देह त्याग कर दे तो अयोध्यावासी सारे अपना देह त्याग करेंगे, यहाँ सुग्रीव देह त्याग कर देगा, अल्टीमेटली सब लोग मर जाएंगे, वो सब देखने के पहले हम ही मर जाते हैं। तो ये सब सोचते रहते हैं, तब वहां पे स्वयं प्रभा नाम की एक अप्सरा आती है और उन्हें प्रसाद खिलाती है गुफा में। और उसके बाद में जब वो लोग चर्चा करते हैं कि जटायु ने कैसे राम जी के लिए अपने प्राण त्याग कर दिए रावण से फाइट करते हुए, लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए राम जी के लिए। और ये बात सुनते ही एक बड़ा सा जो एक बर्ड होता है, वल्चर होता है, वो वहां पे आता है और वो उड़ नहीं पाता है, उसके पंख जो है टूटे हुए है, वो धीरे धीरे चलते हुए उनके पास आता है, बोलते है कि किसने यहाँ पे जटायु का नाम बोला, जटायु तो मेरा भाई है, मेरा नाम संपत्ति है। फिर वो संपत्ति बोलता है कि भाई आप लोग जटायु के बारे में बात कर रहे थे, जटायु को क्या हुआ? बोलते नहीं, जटायु तो ऐसे रावण के साथ युद्ध करता हुआ मर गया और राम जी ने जो है उनका क्रियाकर्म कर दिया। और फिर संपत्ति कहानी बताता है कि कैसे जटायु और संपत्ति दोनों भाई थे और एक दिन दोनों रेस लगा रहे थे, सूर्य के पास से उड़ रहे थे और सूर्य की किरणें इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी और जटायु छोटा था तो उसकी विंग्स जल जाएगी, कहीं उसके पंख जल ना जाए, उसको बचाने के लिए संपत्ति उसके और सूर्य के बीच में आ जाता है और संपत्ति के जो पंख है वो जल जाते हैं। लेकिन उसके भाई के लिए जो उसका प्यार है वो देखते हुए सूर्यदेव उसको ब्लेसिंग्स देते हैं कि एक दिन जब सीता को ढूंढते हुए कुछ वानर वहां आएंगे और तुम अगर सीता के बारे में उन्हें सही जानकारी दोगे तो तुम्हारे ये पंख वापिस आ जाएंगे। और संपत्ति इतना शार्प था, उसकी आईज भी इतना शार्प थी कि वहां पे बैठे हुए वो बता देता है कि सीता माता लंका में है, 800 किलोमीटर अवे, उतना दूर तक वो देख सकता है। फिर वो बताता है कि नहीं, मैं देख पा रहा हूँ सीता माता जो है लंका में ही है और आपको जो है ये समुद्र क्रॉस करके उधर जाना पड़ेगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन हनुमान को देते हैं। नेक्स्ट ध्यान में चले जाएंगे। सूक्ष्म रूप धरिसि असि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। यहाँ पे बोल रहे हनुमान जी, आप कभी कभी सूक्ष्म रूप में आ जाते हो, कभी कभी बिकट रूप धर लेते हो, कभी कभी भीम रूप धर लेते हो, उनके अलग अलग गुणों के बारे में बता रहे। हम सबको पता है कैसे जाम्बवान हनुमान जी को याद कराता है कि तुम में ये शक्ति है, तुम खुद सकते हो, तुम जाओ। अंगद बोलता है मैं तो खुद सकता हूँ लेकिन वापिस नहीं आ सकता। जाम्बवान बोलता है मैं तो वृद्ध हो गया हूँ, अब जो है हनुमान जी को ही जाना है लंका में और सीता जी को ढूंढना है। अब रामचंद्र भगवान अपनी अंगूठी जो है हनुमान को देते हैं कि जब तुम्हें सीता मिलेगी तो तुम्हें ये अंगूठी उसे दे देना। अब हनुमान बोलते हैं एक्सक्यूज मी, सब कुछ अच्छा है लेकिन मैंने कभी सीता को देखा नहीं है, मुझे पता कैसे चलेगा सीता कौन है। वे राम जी सारा एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, बोलते कि सीता देखने में थोड़ा सा गोरी है, ऐसी है, उसका नाक ऐसा है। हनुमान जी बोलते एक्सक्यूज मी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इतना सारा एक्सप्लेनेशन, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, मैं क्या करूं, हर एक लेडी के पास जाके इसका नाक कैसा है, इसकी आंखें, मैं नहीं कर सकता, मुझे उसकी फिजिकल ब्यूटी के बारे में मत बताइए, उनके गुणों के बारे में बताइए, उनके गुण क्या है, मैं गुणों से पहचानूंगा सीता माता को। फिर राम जी बोलते अच्छा सीता का गुण, जहां सीता है वो जहां भी है जैसे भी सिचुएशन में वो सिर्फ मेरा नाम ले रही है, ये उसका गुण है। तो हनुमान जी बोलते दैट्स फाइन, मैं अभी उसको लेके ढूंढूंगा सीता को। और फिर जब सीता जी को ढूंढने के लिए जाते हैं तो हर एक जगह ढूंढते हुए अशोक वाटिका के पास जब आते हैं तो अशोक वाटिका के झाड़ में, झाड़ के पत्तों में सब जगह राम राम राम, वो समझ जाते हैं हाँ यही कहीं होगी, क्योंकि राम जी ने बोला था जहां सीता है वहां मेरा नाम है, क्योंकि वो कंटिन्यूसली मेरा नाम ही लेती है। तो आसपास में, तो इस पूरे प्रोसेस में हनुमान जी को बहुत कुछ करना पड़ता है क्योंकि उन्हें पता नहीं कि वो अशोक वाटिका में, वो सोचता है शायद रावण ने किसी बड़े महल में रखा होगा। तो हरे अब अंदर में घुसना है तो अपने रूप में तो घुस नहीं सकते, तो सूक्ष्म रूप में इतने से मस्किटो जैसे बन जाते हैं वो, अब छोटा सा मस्किटो तो हर जगह चला जा सकता है, तो हर एक, अब रावण की एक रानी तो थी नहीं, हजारों रानियां थी, तो हर एक के भवन में जाता है, ढूंढता है। यहाँ तो अब मंदोदरी को देखता है, मंदोदरी भी बहुत सुंदर थी, तो हनुमान जी एक मिनट के लिए सोचते शायद यही होगी सीता। फिर मन में आते कि सीता जी ऐसे सोएगी तो नहीं आराम से, वो भी इतना सब ऑर्नामेंट्स पहने हुए, 100% या तो रो रही होगी या तो राम को याद कर रही होगी। तब जब हनुमान जी ऐसे घूमते हैं, तब एक मिनट के लिए सोचते हैं कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, इज इट राइट ऑन माई पार्ट, क्या मुझे ऐसा करना चाहिए, एक ब्रह्मचारी होके मैं इतने लोगों के कमरों में वो भी रात को घूम रहा हूँ, क्या ये सही है। वे दो मिनट के लिए वो रुक के सोचते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही है या गलत है, और फिर सोचते नहीं, मैं अपने सेंस एंजॉयमेंट के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं राम की सेवा के लिए कर रहा हूँ। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इवन हमारे भक्ति जीवन में जब भी हम कुछ सेवा करते हैं, हमें हर बार चेक करना चाहिए कि कहीं सेवा करते करते हम अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन में तो बिजी नहीं हो गए। कभी कभी हमें पता नहीं चलता, बिकॉज देर इज सच ए सटल लाइन, कब हम वो लाइन क्रॉस कर चुके हमें पता ही नहीं चलेगा। कभी कभी हम सेवा में भी कितने सेलेक्टिव हो जाते हैं, जो सेवा हमें थोड़ा सा आनंद देता है, हमारे सेंसेस को भी आनंद देता है, हम उसी को करना चाहते हैं। और कभी कभी हम भगवान के नाम पे कुछ चीज़ें यूज करते हैं, लेकिन शायद धीरे धीरे अल्टीमेटली अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए उसको यूज करने लगते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कब ऐसे हो गया, राइट। से फॉर एग्जाम्पल, जैसे कंप्यूटर्स है या कोई भी टेक्नोलॉजी है या फोन है, उसको हम क्यों लेते हैं एज ए डिवोटी, हमें उसे भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। लेकिन कभी कभी हम क्या होते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं, उसको अलग उसमें यूज करने लगते हैं। तो एज ए डिवोटी हमें भी हर बार चेक करना चाहिए कि मैं जो भी फैसिलिटीज यूज कर रहा हूँ, क्या भगवान की व्हाट इज माई इंटेंशन, वेरी इंपॉर्टेंट। हनुमान जी ने चेक किया, व्हाट्स माई पर्पस, रात को सबके कमरे में मैं क्यों घूम रहा हूँ। सी कभी कभी ऐसा होता है कि हम भी कुछ काम शुरू करते हैं भगवान को आनंद देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो कब हमें आनंद देने लगती है हमें पता नहीं चलता, और हमें अच्छा लगने लगता है, और फिर हम उसको ढक देते हैं कि नहीं नहीं, आई एम जस्ट डूइंग इट एज कृष्णस सर्विस, राइट। तो दैट शुड नॉट बी द थिंग। ऐसे सिंपल एग्जाम्पल, जैसे माता जी लोग खाना बनाती है, तो एक्चुअली एटीट्यूड होना चाहिए कि दैट्स फॉर मेकिंग कृष्णा हैप्पी, बट एक्चुअली धीरे धीरे वो कृष्णा हैप्पी का कुछ नहीं रहता है, हमें अच्छा लगता है पास्ता तो हम खाएंगे, हमें जो अच्छा लगता है हमें खाना है इसलिए कृष्णा को ऑफर कर देंगे क्योंकि हमें खाना है। कहाँ हम चेंज से, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने बोला था कि आकंठ खाओ, ये करो, उसका मतलब है कि हम भगवान के लिए प्यार से बहुत सारी वैरायटीज बनाए, ये नहीं कि हमें खाना है इसलिए हम भगवान को ऑफर कर, ऐसा हमारा पूरा एटीट्यूड थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। वॉट एवर फैसिलिटी हम यूज करते हैं, वॉट एवर चीज हमें भक्ति के इस जीवन में मिल रही है, हमें घड़ी घड़ी चेक करना चाहिए कि इसका मिस यूटिलाइजेशन तो नहीं हो रहा है। कोई हमें रेस्पेक्ट करते हैं क्योंकि हम डिवोटी है, कोई हमें प्रणाम करते हैं, हर बार हमें चेक करना चाहिए कि एम आई एंजॉइंग इट, क्या मुझे अच्छा लग रहा है, क्या मुझे मजा आ रहा है, देन यू आर रॉन्ग समवेयर। सी लाइक हर बार मैं ये एग्जाम्पल देती हूँ कि बंगाल के गांव में जब दुर्गा पूजा होती है तो दुर्गा की मूर्ति बनाते हैं बहुत सारी, अब नहीं, पहले के टाइम में तो गधों के ऊपर में मूर्ति को रख के ट्रांसपोर्ट करते थे, उन दिनों में या तो बुलक कार्ट्स होते थे या तो गधों के ऊपर में। अब गधों के ऊपर में जब दुर्गा की मूर्ति ट्रांसपोर्ट करते हैं तो गांव के लोग जब दुर्गा की मूर्ति को आते जाते देखते हैं तो उसको प्रणाम करते हैं। अब गधा सोचने लगता है कि सब लोग मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब जब दुर्गा की मूर्ति का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, जिसके घर में देना था बेच दिया, जब गधा वापिस आता है तब कोई प्रणाम नहीं करता है। गधा सोचते ये लोग को क्या हुआ, दे सपोज टू डू प्रणाम, प्रणाम क्यों नहीं कर रहे। पर गधे को पता नहीं कि भैया तुझे प्रणाम नहीं कर रहे, वो जो मूर्ति रखी हुई है ना उसको प्रणाम कर रहा था। कभी कभी ऐसा हो जाता है ओवर द टाइम, जब लोग रेस्पेक्ट देना शुरू करते तब हमें लगता है कि मुझे रेस्पेक्ट कर रहे हैं, पर हम तो गधे ही है, हमको कोई रेस्पेक्ट नहीं करते। एक्चुअली हमारे पीछे जो गुरु परंपरा है, जो कृष्ण है, उसको रेस्पेक्ट करते हैं लोग। क्या हम ये कॉन्शियसनेस में है कि नहीं, दैट इज सो इम्पोर्टेंट। ओवर द टाइम हम सोचेंगे मे बी हम सच में ग्रेट है, सब प्रणाम करें, ग्रेटनेस हम में नहीं है, इट्स हमारे पीछे जो खड़ा है, हम जो परंपरा से कनेक्ट है। सो इट इज सो इम्पॉर्टेंट कहाँ हमारे विचार कब कैसे बदल जाते हैं। कोई भी चीज हो, जैसे डिवोटीज जो आश्रम में रहते हैं, यहाँ जो भी फैसिलिटी है, वेदर वो प्रसाद हो या टेक्नोलॉजी हो या पैसा हो, वन हैज टू बी केयरफुल।